أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث تفسیر المیزان میں، یعنی اصول دین در تفسیر المیزان میں چل رہی تھی، اور بحث ہماری توحید ربوبیت میں تک پہنچی تھی. توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے، اس کو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کر دیا ہے. آج جو بحث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ ہے توحید ربوبی پر دلیلیں، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کائنات کا خالق ایک ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کا رب اور مدبر ایک ہی ہے. تدبیر کائنات ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے، وہی ایک ہستی ہے کہ جو اس کائنات کے پورے نظام اور سسٹم کو بنایا ہے اس نے اور چلا رہا ہے. اسی کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور وہی ایک ہی اس کو ادارہ کر رہا ہے، چلا رہا ہے. اس کے اوپر مختلف دلیلیں ذکر کی جا سکتی ہیں. بہترین دلیل کہ جس کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کو علم کلام کے اندر دلیل تمانع کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. تمانع منع سے، تمانع تیمی ملف ما نون اور عین، تمانع دلیل تمانع کہا جاتا ہے. ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں اس دلیل کو ذکر کرنے سے پہلے، وہ یہ کہ درست ہے کہ اس دلیل کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور اگر ہم قرآن کا سہارا لیں گے تو یہ دلیل عقلی نہیں بلکہ دلیل نقلی کہلائے گی. لیکن یہ جو دلیل قرآن نے ذکر کی ہے، دلیل نقلی کے اندر جو ہے وہ، میں پہلے یہ عرض کر دوں، دلیل نقلی اس دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اور روایات میں نقل ہو، عقل اس تک یا نہ پہنچ سکتی ہو، یا جو دلیل بیان کر رہی ہے وہ امر تعبدی ہو، یعنی جس میں ایمان لانا فقط ضروری ہے، اگرچہ عقل اس کو فہم نہ بھی کر سکے. جس طرح کے مثلا مختلف احکام ہیں، نماز واجب ہے مثلا، حج واجب ہے مثلا، اس طریقے سے نماز واجب ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل عقلی ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی عقل جو ہے اس تک پہنچ سکتی ہے اگر اس کی مصلحت جو ہے وہ موجود ہے تو. اب نماز کے وجوب کو ہم کہاں سے سمجھتے ہیں؟ ہم قرآن و روایات سے سمجھتے ہیں. بس جہاں پر تعبدی جنبہ آ جائے اس کو کہتے ہیں یہ دلیل نقلی ہے. دلیل عقلی کے اندر استدلال و برہان موجود ہوتا ہے، وہاں پر تعبد نہیں ہوتا. وہاں پر چونکہ دلیل عقلی ہوتی ہے، عقل فہم کر سکتی ہے اس مطلب کو، عقل اپنے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی. اب یہ جو دلیل ذکر کی ہے قرآن نے توحید ربوبی کے اوپر، اگرچہ قرآن نے نقل کی ہے، اس سے پہلے جو ہیں آپ کو کتابوں میں یہ دلیل نہیں ملے گی، فلاسفہ نے یہ دلیل قائم نہیں کی ہوئی تھی، یا متکلمین کی طرف سے دلیل عقلی کے عنوان سے ذکر نہیں ہوئی تھی، کی قرآن میں ذکر ہے یہ دلیل. لیکن چونکہ یہ عقلی دلیل ہے، قرآن نے عقلی دلیل کو ذکر کیا ہے اور استدلال ذکر کیا ہے، نہ کہ اقیم الصلاح کی طرح جو ہے وہ امر دے دیا، نہ بلکہ استدلال قائم کیا ہے. बस दुरुस्त है कि ये कुरान से नकल कर रहे हैं दलील को, लेकिन हकीकत में ये खुद क्या है? दलील, दलील अकली है। ये है, हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज जो कुरान में जिक्र है वो दलील नकली कहलाएगी और ताबुदी कहलाएगी, ना। जो कुछ भी रिवायात में नकल है दलील नकली कहलाएगी, दलील ताबुदी कहलाएगी, ना कि दलील अकली, ना। ईमानियात अकायद के अंदर अक्सर रिवायात व आयात ऐसी हैं जिसमें इस्तिदलाल पोशीदा है, इस्तिदलाल किया गया है और मुखातब को भी कहा है इस इस्तिदलाल के जरिए अकीदा कायम करो। बस दलील अकली जरूरी नहीं है कि वो कुरान में ना हो, बल्कि कुरान में अगर हो भी तो दलील अकली होने में कोई जरर नहीं होता। दलील जो मामूलन जिक्र की जाती है और अर्ज किया कि इल्म कलाम और फलसफे की किताबों की तरफ रुजू करेंगे तो इसको बुरहाने तमानु से याद किया जाता है। वो है सूरह अंबिया की आयत नंबर 22। यूं इरशाद हो रहा है कि लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर जमीनों आसमान के अंदर खुदा के अलावा भी माबूद होते लफसदता, तो जमीनों आसमान फासिद हो जाते, यानी इनका सिस्टम खत्म हो जाता, ये वजूद अपना बाकी ना रख सकते। फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, परवरदिगार मुनज्जा है उस चीज से के जिसको ये बयान करते हैं। अब एक मतलब इस आयत में क्या है, लो काना फीहिमा आलेहतुन, यहां आलेहा से मुराद जो है वो खालिक नहीं है बल्कि रब मुराद है यहां पर। यानी अगर जमीनों आसमान के खुदा के अलावा रब होते मुतअद्दिद तो जमीनों आसमान फासिद हो जाते। खूब क्या दलील है हमारे पास कि यहां आलेहा से मुराद जो है वो रब है? उसकी दलील ये है, चूंकि हम पिछले दर्स में ये मतलब बयान कर चुके हैं कि मुशरिकीन, बुतपरस्त, खालिक एक ही मानते थे और मुतअद्दिद आयात आपकी खिदमत में तलावत फरमाई थी। बस एक तरफ से रिवायात, एक तरफ से आयात इस बात पर ताकीद कर रही हैं कि बुतपरस्त जो थे, मुशरिकीन जो थे, वो खालिक में मवाहिद थे, खालिक एक ही मानते थे। लेकिन मुश्किल जो है वो रब के अंदर थी। इस बात की तसरीह जो है वो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 39 में परवरदिगार ने यूं फरमाई है, अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। कितना खूबसूरत और वाज़े अंदाज में बयान किया कि आया जुदा जुदा मुतअद्दिद रब होना बेहतर है या रब फकत अल्लाह की जात हो ये बेहतर है? अल्लाह कौन है जो वाहिद कहार है? केस की वजाहत जो है पहले कराएं, वाहिद कहार से क्या मुराद है। बस एक मतलब हमारा यहां से ये वाजे हो जाता है कि इस आयत के अंदर सूरह अंबिया की 22 नंबर आयत जो हमारी इस्तेदलाल का मुरिद है, इसमें आलेहा से मुराद रब है। अब जैसा कि अर्ज किया कि ये आयत दलीले अकली है, यानी क्या मुराद, यानी बुरहान है ये पूरा अपने वजूद में, अपनी हकीकत में। मंतिक जिन्होंने पढ़ी है उनको इस बात का पता है हतमन कि बुरहान जो है इसको, इसकी मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती हैं। कभी बुरहान जो है वो कियासे इकतरानी की सूरत में होता है और कभी जो है वो कियासे इस्तिस्नाई की सूरत में होता है। मैं अभी इसकी वजाहत नहीं करूंगा क्योंकि अगर इस बहस में वारिद हो जाएं तो मुझे बहुत ज़्यादा वजाहत करना पड़ेगी, और वो दोस्तान के जो इस दर्स को सुन रहे हैं और आप में से भी जो इल्म मंतिक से आशना नहीं हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इल्म मंतिक को लाजमी पढ़ें, क्योंकि अकाइद की बहसें जो हैं वो दलील पर कायम हैं, और दलील को कायम करने के लिए, दलील को सही बयान करने के लिए, दलील को सही समझने के लिए कवायद इल्म मंतिक का जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा जो हजरात इल्म मंतिक से आगाह नहीं हैं, वो हतमन इल्म मंतिक के दर्स को हासिल करें, और इल्म मंतिक के दर्स दिए भी जा चुके हैं, इब्तदाई लेवल की किताब तदरीस हो भी चुकी है, कि अगर आप मेरी साइट की तरफ जो है वो रुजू करें, syedzair.blog.ir इसकी तरफ, तो वहाँ पर मंतिक के शहीद मुताहरी के नाम से इब्तदाई लेवल के दर्स मौजूद हैं। वहाँ पर क्यास इकतरानी और क्यास इस्तिस्नाई क्या है, तफसीलन बहस की गई है, समझाया गया है। खूब, ये मैं अहले इल्म के लिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो मंतिक से आगाह हैं, वाइल्ला अगर मैं इस इस्तेलाह को बीच में ना भी लेकर आऊं और इस्तेदलाल कायम करूं तो ज़रूरी नहीं है हर बंदे को समझ में आ सकता है। बहरहाल, फिर भी इस्तेलाहात का जानना जो है वो ज़रूरी है। बस इस्तेदलाल की जो है वो दो सूरतों में नकल किया जाता है, बयान किया जाता है, कभी वो क्यास इस्तिस्नाई क्यास इकतरानी की सूरत में होता है, कभी जो है वो क्यास इस्तिस्नाई की सूरत में होता है। और ये जो आयत के अंदर बुरहान जिक्र हुआ है, ये क्यास इस्तिस्नाई की शक्ल में है। क्यास इस्तिस्नाई के अंदर क्या होता है, मुकद्दम और ताली होते हैं, और फिर जो है उसका नतीजा जो है वो इस्तिस्ना पर मुश्तमिल होता है, इल्ला पर मुश्तमिल होता है। इल्ला इस्तिस्ना क्या आता है उर्दू में, जिसे कहते हैं हम लेकिन, लेकिन पर मुश्तमिल होता है। कैसे इस्तिस्नाई का एक मुकद्दमा लेकिन पर मुश्तमिल होता है। खूब, ये था थोड़ा तवज्जो दिलाना उनको के जो इल्म मंतिक से आगाह हैं। अब आते हैं दलील के ऊपर, कि दलील कैसे कायम करनी है इसके ऊपर। दलील यूं कायम होगी, कुरान फरमा रहा है कि अगर मुतअद्दिद रब हूं खुदा के अलावा इस कायनात में, तो ये कायनात फासिद हो जाती। बस आपने देखा यहां पर एक जो है वो मतलब है कि अगर मुतअद्दिद खुदा होते, खुद मुतअद्दिद रब होते तो निजाम फासिद हो जाता। अब हमने यहां ये साबित करने की कोशिश करनी है कि इन दो बातों में तलाजुम है या नहीं, क्योंकि तलाजुम कायम किया गया है कि अगर खुदा के अलावा मुतअद्दिद रब होते तो निजाम फासिद हो जाता। तो क्या तलाजुम है इनके दरमियान, आया मुमकिन, क्या आया अकलन मुहाल है या ना, कोई ऐसी सूरत बाकी बच सकती है कि जिसमें मुतअद्दिद अगर रब हो तो निजाम फासिद ना हो सकता। हमने ये तलाजुम कायम करने की कोशिश करनी है। अगर हमने ये तलाजुम साबित कर दिया तो नतीजा खुद बहुत सामने आ जाएगा, यानी जब हमने ये साबित कर दिया दलील अकली के साथ कि तअद्दुद रब फसाद निजाम को मुस्तलजिम है, फसाद निजाम लाजिम आता है अगर रब मुतअद्दिद हो जाएं, तो नतीजा खुद बखुद सामने आ जाएगा, क्योंकि हम इस कायनात में फसाद नहीं देख रहे। कायनात अपनी जगह बाकी है, अपनी जगह पर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो चल रही है, इसका निजाम चल रहा है। बस जब हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि तअद्दुद इलाह जो है वो नहीं है, नतीजा ये निकल आएगा। फरमाते हैं ये तलाजुम जो है वो हम यूं आकर साबित करते हैं कि खूब, यूं आकर इसको साबित करेंगे कि अगर रब मुतअद्दिद होते तो इसकी चंद सूरतें हम फर्ज कर सकते हैं। متعدد رب ہیں، مثلا فرض کریں مثال کے طور پر ہم چلتے ہیں، متعدد کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ اس کائنات کے دو رب ہیں یا تین رب ہیں، تین رب ہیں، یہ تین رب جو ہیں مثال کے طور پر چل رہے ہیں آگے، وائلہ آپ کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں اس کا، اس کائنات کے جو ہیں وہ مثلا تین رب ہیں. اب یہ تین رب کیسے عالم کی تدبیر کریں گے، اس میں تین صورتیں متصور ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ تینوں رب اس پورے کے پورے عالم کو، جو کہ ایک ہی عالم ہے، اس کو چلا رہے ہیں، اور ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کوئی اپنی جگہ مستقل، پورے کا پورا رب تمام شرائط کائنات میں تدبیر کر رہا ہے. یعنی یہ ایک عالم جو ہے اس کو بانٹ کر نہیں تدبیر کر رہے تینوں رب، بلکہ پورے کا پورا جو ہے وہ اپنا عالم سمجھ کر اس کو چلا رہا ہے. ایک صورت یہ ہے، اس پوری کائنات کو تین رب مستقل طور پر چلا رہے ہیں، نہ یہ کہ انہوں نے اس کائنات کو اپنے اندر تقسیم کیا ہوا ہے اور پھر ہر کوئی اپنے میدان میں جو ہے وہ تدبیر کر رہا ہے. نہ، پہلی صورت یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک ہی کائنات کو تین رب چلا رہے ہیں، یہ ایک صورت ہے. یہ صورت جو ہے وہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رب نے اسی طریقے کے قوانین بنا کر تدبیر کرنا ہے کہ جو اس کے ساتھ سازگار ہوں، جو اس کے ساتھ سنخیت رکھتے ہوں، جو اس کے ذات کے ساتھ ملائم ہوں. قرآن مثلا جیسے ارشاد فرماتا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، آیت سورہ اسراء کی آیت 84 میں کہا جا رہا ہے کہ مثلا ہر کوئی اسی طریقے کا عمل کرتا ہے جس شکل و خصوصیت پر وہ ہوتا ہے. بس تین رب ہیں تو حتمن ان کے اندر ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو خصوصیات جو ہیں وہ باقیوں کے اندر نہیں پائی جاتی. مثلا الف رب میں ایسی خصوصیت جو بے میں نہیں پائی جاتی، بے میں ایسی خصوصیت ہے کہ جو جیم میں نہیں پائی جاتی، جیم میں ایسی ہے جو ان دونوں میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ تین تبھی بنیں گے جب خصوصیات مختص رکھتے ہوں گے. بس جب ان کی خصوصیات مختص بھی ہیں جو ایک دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس خصوصیت کا لازمہ یہ بنے گا کہ وہ ایک ایسا قانون بنائے گا جو اس خصوصیت سے سازگار ہوگا، لیکن باقی خصوصیات جو دوسروں کے اندر پائی جاتی ہیں ممکن ہے اس کے ساتھ سازگار نہ ہو وہ قانون. بس اگر ایک رب اپنے شاکلے کے تحت، اپنے مثلا مثال کے طور پر عرض کرو، مثال کے طور پر عرض کرو، اپنے مزاج کے تحت ایک قانون لاگو کر رہا ہے اس کائنات پہ، اور وہ قانون دوسرے رب کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک ہی کائنات ہے بیچاری، تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ مشکل پیش آ جائے گی. ایک کہہ رہا ہے کہ سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے سورج نہیں نکلنا چاہیے. ایک کہہ رہا ہے کہ مثلا انسان کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے انسان کو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، زمین فاسد ہو جاتی. بس یہ صورت تو بل بداہا، بل اس کا کہہ لے واضح طور پر باطل ہے. دوسری صورت کیا بنتی ہے؟ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہ تین رب ہیں، ان تینوں رب نے الگ الگ میدان، اب الگ الگ علاقے جو ہیں وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کر رہا ہوں، مثلا الگ الگ علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ یہ والا علاقہ میرا، اس میں میں تدبیر کروں گا، یہ والا علاقہ تمہارا، اس میں تم تدبیر کرو، اور تیسرا علاقہ جو ہے وہ تمہارا، وہ تم تدبیر کرو. اس طریقے سے آ کر صورتحال بن جاتی ہے، یہ دوسری صورت بنتی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت کو بھی مان لیا جائے تب بھی کائنات میں فساد لازم آئے گا، کہ اگر ہر ایک بندہ الف کہے کہ مثلا انسان کو، مثلا کیا کہوں، سمندر کے نظام کو میں تدبیر کروں گا، خب रब जो है वो कहता है कि खुशकी के निजाम को मैं चलाऊंगा। जीम कहता है मसलन आसमान के जो निजाम को जो है वो मैं चलाता हूं, बस यूं तकसीम कर लेते हैं। खूब, क्या लाजिम आएगा यहां पर? यहां पर लाजिम क्या आएगा? और अच्छा, ये फर्ज भी जहन में रखें कि ये रब जो हैं अपने अपने इलाके में मुस्तकिल हैं, अपने अपने इलाके में। मसलन जो पानी का निजाम चलाने की वजीफा अपने सर ले रहा है, तो वो क्या है, वो मोहताज नहीं है किसका, उस रब का, के जो क्या है खुशकी के निजाम को चलाना चला रहा है। इनका कोई ताल्लुक नहीं है अपने आप से एक दूसरे के साथ, मुस्तकिल ही मुस्तकिल है। वो अपने खुशकी के निजाम को चलाने में मुस्तकिल है, ये अपने क्या है पानी के निजाम को चलाने में मुस्तकिल है। खूब, अब आप देखें क्या बनेगा यहां पर सूरत। सूरत ये बनेगी कि जो पानी के निजाम को चला रहा होगा और पानी के निजाम को बनाया होगा इस रब ने, तो जो खुशकी का कानून बना रहा होगा और इजरा कर रहा उसका, इन दो कवानीन के दरमियान फिर कोई रब्त नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो पानी के कवानीन बना रहा है वो खुशकी को मद्देनजर रखकर नहीं बना रहा। खुशी को मद्देनजर रखकर नहीं बना रहा, और खुशकी वाला जो खुशकी के लिए कानून बना रहा है वो पानी की खसूसियात को मद्देनजर रखकर नहीं बना रहा, क्योंकि मुस्तकिल है, उसने खुशकी को अपने आप अपने जिम्मे लिया हुआ है। खूब, अब क्या होगा, पानी वाला अगर कानून बनाता है और एक निजाम बनाता है और इजरा करता है, और खुशकी वाला एक कानून बनाता है फिर उसको इजरा करता है, तो मुमकिन है कि वो पानी को इस तरीके से सिस्टमैटिक करे, उसके अंदर निजाम ऐसा बनाए कि अगर वो खाक पर गिरेगा तो क्या होगा, खाक जल जाएगी, क्योंकि वो खसूसियत मिट्टी से, मिट्टी की खसूसियत से आगाह ही नहीं है, और उसने पानी के कानून बनाने में इसको मद्देनजर ही नहीं रखा, ताकि पानी मिट्टी पर गिरे तो फिर वहां मिट्टी का भी फायदा हो और फिर उससे मजीद जो है वो मखलूकात को जो फायदा हो जाए। उसने फकत और फकत पानी को मद्देनजर रखकर कानून बना दिया। अब जब ये मिट्टी पर गिरे, मुमकिन है मिट्टी सड़ जाए उसके जरिए, वो एक ऐसी खसूसियत रख दे पानी के अंदर और कानून हो उसके अंदर, निजाम हो ऐसा कि मिट्टी पर गिरते ही मिट्टी जो है वो सड़ जाए और पानी भी जो है वो खराब हो जाए, मुमकिन है ऐसा? क्योंकि आपस में इर्तेबात नहीं है, मुस्तकिल हैं। तो ये मुश्किल लाजिम आएगी यहां पर, तो जमीन जो है वो फासिद हो जाएगी, जमीन जो है वो फासिद हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है उसके अंदर खसूसियत ऐसी है कि जो मिट्टी पर गिर ही नहीं सकता है। मतलब मिट्टी पर गिरेगा, मिट्टी को भी खराब करेगा, खुद भी खराब हो जाएगा। कवानीन मुस्तकिल होंगे, एक दूसरे के साथ मुर्तबित नहीं होंगे। मसलन अभी आप अगर कायनात को देखते हैं तो आपको मुर्तबित लग रहा, खुशकी पानी के साथ जो है मुर्तबित है, और पानी जो है वो खुशकी और आसमान के साथ मुर्तबित है। इसी वजह से आप देखते हैं कि पानी जो है वो और खुशकी के जो कवानीन है एक दूसरे के साथ साजगार हैं। पानी बुखारात बनता है, बादल बनता है, बादल से बारिश बरसती है, उस बारिश से जमीन जो खुशकी है वो जो है उसके अंदर इस्तेदाद पैदा होती है, वो मजीद जो है इन चीजों को लेकर आता है। एक ही लड़ी में परोया हुआ कानून नजर आता है। लेकिन अगर रब मुतअद्दिद हो इस तरीके से, जिस तरीके से बयान किया है, तो इसका मतलब है कानून बनाने वाला फकत अपने ही दायराकार को मद्देनजर रखकर कानून बनाएगा, बाकी जो दायराकार हैं वो उसके असलन मद्देनजर ही नहीं होंगे। वो अगर कानून बनाएगा तो आप देखेंगे कि फसाद लाजिम आएगा। एक सादी सी मिसाल जहन को करीब करने के लिए, ये भी बात ध्यान में रखें, जब मिसालें जिक्र की जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 100% आपके जहन को मतलब के मतलब जैसा ही जो है वो समझाना होता है, बल्कि मिसाल जो है वो जहन को आमादा करती है ताकि आप असले मतलब को समझ सकें। अब मुमकिन है मिसाल एक जहत से जो है मतलब के करीब हो, कई जहत से मतलब से दूर हो, हमने फकत वो जहत करीब को लेना होता है जो मतलब को समझाने के लिए कामयाब होती है। मतलब अभी आप देखें, इंसान की कायनात को अगर आप मद्देनजर रखें, ये कायनात है, छोटी सी कायनात है पूरी, इसके मुख्तलिफ दायराकार हैं, आंख है, कान है, मसलन क्या है, दिल का मसाला है, गुर्दे हैं, इस किस्म की मुख्तलिफ जो है वो चीजें पाई जाती हैं। खूब, अब ये जो एलोपैथी चल रही है इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो हैं वो हर एक एक दायराकार में मुतखसिस है। मतलब आंख का जो डॉक्टर होगा उसको दिल के निजाम के बारे में असलन पता नहीं होगा। इसी तरीके से जो कान का डॉक्टर होगा या बाकी अज़ा का डॉक्टर होगा उसको आंख के बारे में कोई मालूमात नहीं होंगी, दकीक मालूमात नहीं होंगी। अभी बात ये चल रही है, वाला मुताला कर लेगा इंसान तो वो मुताला इल्म तो हो जाएगा। बात ये हो रही है कि मसलन वो आंख का मुतखसिस है। खूब, अब आपने देखा कि एलोपैथी के अंदर जो दवाइयां बनती हैं अक्सर यही, बल्कि सब इस बात का आप यकीन कर चुके हैं, साइंसी तौर पर यह साबित हो चुका है कि ये दवाइयां साइड इफेक्ट रखती हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो साइड इफेक्ट ना रखती हो। क्यों, उसकी वजह क्या है, कभी आप तहकीक करके देखें तो आपको मालूम होगा। क्योंकि आंख के डॉक्टर ने आंख को मद्देनजर रखकर फकत इस दवाई को बनाया है। क्योंकि वो आंख का डॉक्टर था, बाकी अज़ा की निस्बत वो दकीक मालूमात नहीं रखता था, बाकी निजाम से उसको इत्तला नहीं थी, वो मुस्तकिल होकर आंख के बारे में तहकीक करता है, उस आंख की बीमारी के बारे में एक दवाई को बनाता है। अब वो दवाई जो बनी हो बनाता है, वो दवाई जब इंसान को दी जाती है तो उसकी आंख की मुश्किल तो हल हो जाती है, लेकिन चूंकि इस दवाई में फकत आंख के निजाम को मद्देनजर रखा था, बाकी निजाम जो इंसान की कायनात में मौजूद है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया था, बस वो दवाई क्या करती है, बाकी निजामों के ऊपर जो असरअंदाज होती है वहां जाकर मुश्किल खड़ी कर देती है, बस इस वजह से उनके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। खूब, आपने देखा कि अगर मुतअद्दिद रब हूं तो किस तरीके से इस इंसान के अंदर जो है वो फसाद लाजिम आता है। एक मिसाल दी है छोटी सी इस तरीके से। खूब, अगर कायनात में भी इस पूरी कायनात को अगर जुदा जुदा हर एक 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 का जो है वो निजाम संभाल ले, तो जो कानून बनेगा वो कानून आपस में रब तो इत्तेसाल नहीं रखते होंगे, जुदा जुदा निजाम होंगे, और इन निजामों की जुदाई का लाजमा क्या निकलेगा, फसाद, मुश्किल से मुश्किलदार हो जाएगा। जब से ये देखें एलोपैथी जो है वो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, इंसान की उम्र कम से कम होती जा रही है, और भी मुश्किल है, लेकिन ये दवाइयां भी बहुत सारी असरअंदाज होती हैं, फसाद लाजिम आता है उससे। बस ये सूरत भी बातिल है कि इस कायनात को मुतअद्दिद रब चला रहे हो, हर रब ने एक अपना इलाका जो है मखसूस करके चला रहे हो, वो रब क्या है, मुस्तकिल है, हाँ इस्तिकलाली तौर पर चला रहे हैं, जिस तरह की आपको तबयीन कर दिया है इस मतलब को। तीसरी सूरत जो बनती है वो ये कि बाज रब ऐसे हैं जो हाकिम हैं और बाज रब ऐसे हैं जो क्या हैं, महकूम हैं। यानी बाज रब ऐसे हैं जिनकी अजमत ज्यादा है, वो बुलंद हैं, और बाज रब ऐसे हैं जो उनके तहत जो है वो रुबूबियत कर रहे हैं, यानी उनकी सदारत में, हाकमियत में वो अपनी रुबूबियत कर रहे हैं। तीसरी सूरत ये है। इसके ऊपर क्या लाजिम आएगा, इसके ऊपर लाजिम ही आएगा कि भाई रब वो रब होता है रब जिसके अंदर इस्तिकलाल पाया जाए। अगर जो छोटे लेवल का रब है और वो बड़े लेवल के रब की हुकूमत में अपनी रुबूबियत कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो छोटे वाला क्या कर रहा है, बड़े की इजाजत लेकर जो है वो रुबूबियत कर रहा होता है। यूं होता है, हाकिम की इजाजत से जो नीचे महकूम है और उसके कम लेवल का बंदा है उसकी इजाजत से ये काम कर रहा होगा, तो हमारा फर्ज ये नहीं है, असलन फर्ज से खारिज हो जाएगा, असल मुहाल है। क्यों, इस वजह से कि ये जो इजाजत से रुबूबियत कर रहा होगा ये असलन रब नहीं है, इसको कहते हैं ये सबब है, ये इल्लत है फलां काम की। वो जो हाकिम है उसने इस कायनात को चलाने के लिए मुख्तलिफ असबाब बनाए हैं, उसमें से एक सबब क्या है, ये वाला ये वाली हस्ती है कि जो रुबूबियत कर रही है, रुबूबियत यानी एक निजाम को तदबीर कर रही है। खूब, ये सबब कहलाएगा, ये इल्लत कहलाएगा, ना कि रब। रब वो है कि जो मुस्तकिल तौर पर एक निजामे कायनात को चलाया कर, बस खिलाफ फर्ज है इस तरीके से अगर मान लिया जाए। बस ये तीन सूरतें बनती हैं और तीनों सूरतें बातिल हैं, आपकी खिदमत में इसको अर्ज कर दिया है। अल्लामा तबाताबाई ने इस मतलब को मुख्तलिफ जगह पर बयान किया है। पहला मोरिद जहां पर इस बात को बयान किया है वो है यही आयत सूरह अंबिया की 22 नंबर आयत, उसके जिमन में बयान किया। फरमाते हैं तकरीर हुज्जतिल आया, आयत की दलील किस तरीके से बयान करनी है, वो इस तरीके से है कि अन्नहु लो फुरिजा लिल आलमे आलेहतुन फौकल वाहिद, अगर हम आलम के लिए मुख्तलिफ अरबाब को फर्ज कर लें जो कि क्या हो, वाहिद से हटकर हो, यानी वाहिद ना हो, लकानू मुख्तलिफीना जातन, तो इसका मतलब है वो जाती तौर पर इख्तिलाफ रखते होंगे, यानी जात के एतबार से मुख्तलिफ होंगे। जिस तरीके से दरख्त की जात इंसान की जात से मुख्तलिफ है, इंसान की जात पानी की जात से मुख्तलिफ है, मलाइका की जात इंसान की जात से मुख्तलिफ है, तो ये मुख्तलिफ रब भी अपनी जात के अंदर एक दूसरे से क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। मुतबाइनीना हकीकतन, इनकी हकीकतें भी जुदा होंगी। व तबायुनु हकाइकहिम यकजी बितबायुनु तदबीरहिम, और इनका आपस में मुख्तलिफ होना जाती एतबार से और जाती एतबार से मुतबायन व जुदा होना इस बात का इक्तिजा करता है कि इनकी तदबीर भी क्या हो, मुतबायन हो। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक अलिफ रब के अंदर ऐसी खसूसियात हैं कि जो बे के अंदर नहीं पाई जाती, तो अलिफ अपनी खसूसियात को मद्देनजर रख कर कायनात के लिए एक निजाम बनाएगा और बे अपनी खास खसूसियात को मद्देनजर रख कर जो है वो कायनात के लिए कानून बनाएगा, तो बस तदबीरें ला मुहाला क्या हो जाएंगी, जुदा हो जाएंगी। फततफासदु तदाबीरात व तफसदु समाउल अर्ज, बस यहां पर तदाबीर जो है वो फासिद होंगी। फासिद से क्या मुराद है, यानी टकराएंगी एक दूसरे के साथ और फिर जो है वो गलत साबित होंगी और जमीनों आसमान को क्या कर देंगी, फासिद कर देंगी। तो फसद समा अवल अर्ज, और ये तदाबीर जो है वो जमीनों आसमान को फासिद कर देंगी। ये मतलब जो है वो अल्लामा ने अपने जिल्द नंबर मीजान में जिल्द नंबर 14 और सफा नंबर 267 यानी 267 के अंदर जो है ये इरशाद फरमाया है, तबीयन यूं की है उन्होंने, और ये सूरह है अंबिया की 22 नंबर आयत के जिमन में है। तो यहां पे एक मतलब इन्होंने ये बयान किया, और दूसरी वजह जो यहां पर बयान फरमाते हैं, जो दूसरी सूरत बयान की थी कि अरबाब मुख्तलिफ रब जो हैं वो तदबीरे कायनात करते हैं, लेकिन हर एक अपना इलाका जो है वो मुख्तलिफ तौर पर जो है वो तकसीम कर लेते हैं, उसके मुताबिक जो है वो तदबीर करते हैं। इसको रद्द किया है अल्लामा ने एक और जगह के ऊपर, मतलब आप जिल्द नंबर 15 और सफा नंबर 62 के अंदर जो है इस दूसरे फर्ज को जो है वो रद्द किया है अल्लामा ने। सूरह मोमिनून की आयात नंबर 78 से लेकर 98 के जिमन में जो है इस मतलब को बयान किया है। कौन सी आयत है वो? आयत ये है कि सूरह मोमिनून की 91 नंबर आयत है, मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, खुदा ने वलद का इंतखाब नहीं किया, खुदा की कोई औलाद नहीं है। वमा काना माअहू मिन इलाहिन, और उसके साथ कोई इलाह भी शरीक नहीं है, वो कोई और भी उसके साथ कोई इलाह मौजूद नहीं है। इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक, क्योंकि अगर उसके साथ कोई इलाह होता तो हर इलाह अपने जो खलक करदा चीजें हैं क्या होता, उस उसको उसके साथ चला जाता है, यानी उसके निजाम को जो है वो संभालता है और उसके मुताबिक निजाम को जो है वो चलाता है यहां पर। बस ये आयत का जो टुकड़ा है, इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक, इसमें इस्तेदलाल इस दूसरी सूरत को बातिल करने का है, पोशीदा है। एक छोटी सी आयत है लेकिन इस्तेदलाल इसके अंदर पोशीदा है। अलामा जो है इसको इस तरीके से बयान करते हैं, कहते हैं हुज्जतुन अला नफी तअद्दुद बे बयान महजूर ही, कि ये आयत जो है वो तअद्दुद रब के ऊपर की नफी के ऊपर दलील है और उसके उसके महजूर को जो वो बयान कर रही है, इश्काल को बयान कर रही है। इद ला युतसव्वर तअद्दुदुल आलिहा इल्ला बिबैनूनतहा बिवजहिन मिनल वुजूह, क्योंकि कहते हैं कि तअद्दुद रब उस वक्त मुतसव्वर है कि जब उनके अंदर किसी एतबार से तबायुन पाया जाए, किसी एतबार से जुदाई हो, तादुद होता ही तभी है। मैं आपसे जुदा हूं क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मेरे अंदर हैं कि जो आपके अंदर नहीं है। अगर हम हर चीज में एक जैसे होते तो दो ना होते बल्कि एक होते। बस तअद्दुद आलिहा जो है वो भी उस वक्त मुतसव्वर है कि जब क्या हो, उनके दरमियान किसी एतबार से जो बैनूनत पाई जाए, तबायुन पाया जाए, जुदाई पाई जाए, बेहैसो इस तरीके से कि ला तत्तहिदु फी मअना उलूहियतहा व रुबूबियतहा, इस तरीके से कि वो अपनी उलूहियत व रुबूबियत में मुत्तहिद ना हो, क्योंकि खसूसियात मुख्तलिफ हैं, खसूसियात मुख्तलिफ हैं, तो जब वो रुबूबियत करेगा वो अपने एतबार से करेगा, दूसरा रुबूबियत अपने एतबार से करेगा, बस इनकी जो वो रुबूबियत है वो आपस में कभी मुत्तहिद नहीं हो सकती। वमअना रुबूबियतिल आलिहा फी शत्रिन मिनल कौन व नौइन मिन अनवाही, क्या है तफवीज तदबीर फीहे इलैहे, कहते हैं आलेहा की रुबूबियत का माना क्या है कि अगर उसको एक हिस्से में एक नौ के अंदर अगर रुबूबियत हो दे दी जाए तो रुबूबियत का माना क्या है, क्या है तफवीजुल तदबीर फी है इलैहे, कि उस नौ के अंदर उस कायनात के हिस्से में तदबीर करने के काम को उसकी तरफ सौंप देना, तफवीज कर देना, दे देना उसको, बेहैसो यस तकिल्लो फी अमर ही, इस तरीके से कि वो अपनी इस तदबीर के अमर में मुस्तकिल हो, मिन गैरे अन यहताज फी है इला शै इन गैरे नफसे, इस तरीके से कि वो अपने इस तदबीर के अमर में अपनी जात के अलावा किसी भी चीज का मोहताज ना हो, हत हत्ता इला मन फव्वज़ा इलैहिल अम्र, हत्ता वो तदबीर के मसले में उसका भी मोहताज ना हो कि जिसने तदबीर का काम उसको सौंपा है। मसलन खुदा ने, मिसाल के तौर पर जो खुदा खालिक है उसने क्या किया, कायनात को खल्क करके क्या किया, तदबीरे कायनात का काम जो है मुख्तलिफ लोगों को दे दिया। मसलन कहा कि आलम इंसान की तदबीर तुम करो, आलम हैवानात व नबातात की तदबीर तुम करो, आलम मसलन क्या है आसमान जो है उसकी तदबीर तुम करो, दुरुस्त है, रब उनको बना दिया रब, तो रब बनाने का माना क्या है, यानी काम तुम्हें सौंप दिया गया है मुस्तकिल तौर पर अंजाम दो। अब जो बंदा आलम इंसान के निजाम की तदबीर के ऊपर फाइज हुआ है ये अब मुस्तकिल है अपने तदबीर करने में, हत्ता इस खालिक का भी अब वो मोहताज नहीं होगा, उसको रब कहेंगे, यानी रब उसको कहा जाता है कि जो तदबीरे कायनात के अंदर मुस्तकिल हो जाए, हत्ता खालिक का भी मोहताज ना हो। इंतहाई जरीफ नुक्ता अल्लामा यहां फरमा रहे हैं, और यहीं से जवाब मिल जाता है उन गाली हजरात को भी कि जो आकर ये कहते हैं कि आइम्मा रब हैं, तो आइम्मा रब हैं, रब का माना क्या है, रब का माना यह है कि वो तदबीरे कायनात में मुस्तकिल हो, किसी का मोहताज ना हो अपनी जात के अलावा, हत्ता खुदा के जिसने तदबीर उनको सौंपी है उनके भी इस तदबीर के अंदर मोहताज ना हो, तब उनके ऊपर रब का लफ्ज इतलाक हो सकता है। आया आइमा को अगर तदबीर कायनात सौंपी गई है, क्या इस माना में सौंपी गई है? असला वाबदा, कुरान के मुनाफी है असला। तो बस आइमा को रब भी नहीं कह सकते, रब नहीं कह सकते हम उनको रब का। इसी वजह से मुतअद्दिद आयात के अंदर आइमा ने अपने आप से रुबूबियत की नफी की है। उसकी वजह यही थी, क्योंकि रुबूबियत में ये नुक्ता पोशीदा है और इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए आइमा ने रुबूबियत की नफी की है। खूब, तो आया वो तदबीरे कायनात के अंदर नक्श नहीं रखते, रखते हैं नक्श, लेकिन उसके जवाब फिर बाद में अर्ज किया गया। अगरचे खारिज में जो मैंने मतलब बयान किया उसमें मैं वो मतलब की तरफ इशारा कर चुका हूं, लेकिन जब मैं उस इबारत पर पहुंचूंगा तो उस वक्त आकर मैं मजीद इसकी वजाहत कर दूंगा। मतलब अभी काफी सारा रहता है, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, वक्त मुकर्रर जो था उससे ज्यादा हो गया, इसको तकमील जो है वो फिर बाद में करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।